समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
मोसो कहे चलो कुंजन में, तनक सोनंद को छोड़ा जगत होरी बिज होरा। तनक सोनंद को छोड़ा जगत होरी बिज होरा। कैसा देव निहोरा जगत होरी बिज होरा। कैसा देव निहोरा जगत होरी।
नमस्कार आदाब एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अ फ्रेश एपिसोड ऑफ आज सवेरे। और ब्रज की लठमार होली जो है आधी रात से शुरू हो चुकी है। आई एम श्योर दैट इन द कमिंग डेज द एंटायर कंट्री इज गोइंग टू बी इम्ब्यूर्ड इन द कलर्स ऑफ होली। एंड टुडे इज मी सायरा प्रेजेंटिंग दिस शो विद माय को होस्ट निखिल।
नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन इस कार्यक्रम में जिसका नाम है आज सवेरे। और आज है 19 मार्च और हम बहुत सी रोचक जानकारी लेकर आपके समक्ष फिर से हाजिर हो चुके हैं। शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम की और सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर।
President Draupadi Murmu has asked civil services officers to make use of the latest technologies such as artificial intelligence, blockchain and big data analytics for an efficient and smart administration. She said convergence of new ideas and new technologies with rich and varied experiences can bring such impactful changes that one cannot even imagine. President Murmu was addressing the state civil services officers at Rashtrapati Bhavan yesterday. The officers are attending the 125th induction training program at Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration in Mussoorie. President Murmu said that officers should always keep in mind sustainability and inclusiveness when they undertake any developmental work. She said with the world facing the threats of global warming and climate change, it is essential that they take innovative measures to adopt eco-friendly practices and promote sustainability.
बल्गारिया के राष्ट्रपति रोमेन रोडोल्फ ने अपहृत बल्गारिया के जहाज एमवी रोएन पर भारतीय नौसेना द्वारा चलाए गए सफल बचाव अभियान के प्रति आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया के पोस्ट में कल राष्ट्रपति रोडोल्फ ने बल्गारिया के 7 नागरिकों सहित चालक दल का बचाव करने के लिए भारतीय नौसेना का धन्यवाद किया है। इससे पहले बल्गारिया की विदेश मंत्री मारिया गैब्रियल ने बल्गारिया में भारतीय राजदूत संजय राणा के साथ बातचीत में बल्गारिया के नागरिकों को बचाने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि सभी नाविक स्वस्थ हैं और समय पर उनकी वापसी के प्रयास किए जा रहे हैं। रोएन जहाज को पिछले वर्ष दिसंबर महीने में सोकोत्रा के यमनी के द्वीप के निकट अरब सागर में समुद्री डाकुओं ने अपहरण कर लिया था। इस जहाज पर बल्गारिया के साथ म्यांमा के 9 और अंगोला का 1 नागरिक सवार था। भारतीय नौसेना के अनुसार आईएनएस कोलकाता ने भारतीय समुद्री तट से 2600 किलोमीटर दूर समुद्र में समुद्री डाकुओं द्वारा अपहृत जहाज का पता लगाया और अपनी कार्रवाई से उसे रोकने को बाध्य किया। यह अभियान 40 घंटों तक चला था। इस अभियान में भारतीय युद्धपोत आईएनएस सुभद्र, लंबे समय तक ऊंची उड़ान भरने वाले ड्रोन P-8I, समुद्री गश्ती विमान और मार्कोस प्रहार की सहायता ली गई थी।
प्राइम मिनिस्टर एंड सीनियर बीजेपी लीडर नरेंद्र मोदी विल लॉन्च द इलेक्शन कैंपेन इन केरला विद अ रोड शो एट पालक्काड टाउन दिस मॉर्निंग इन सपोर्ट ऑफ एनडीए कैंडिडेट्स। द रोड शो विल बी हेल्ड ऑन अ 1 किलोमीटर स्ट्रेच फ्रॉम कोट्टा मैदान टू द हेड पोस्ट ऑफिस रोड इन द टाउन। After the road show, Mr. Modi will leave for Salem in Tamil Nadu, where he will address a public meeting this afternoon. Yesterday, he held a road show in Coimbatore. Mr. Modi also paid homage to the victims of the Coimbatore serial bomb blast that rocked the city in the year 1998.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्लादिमीर पुतिन को रूस का फिर से राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि वो आने वाले वर्षों में भारत और रूस के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए श्री पुतिन के साथ मिलकर काम करने को उत्सुक हैं। श्री पुतिन राष्ट्रपति चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए 5वीं बार राष्ट्रपति बने हैं।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हेल्ड अ टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन विद यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉयड ऑस्टिन। बोथ मिनिस्टर्स ब्रीफली डिस्कस्ड अ रेंज ऑफ बायलैटरल रीजनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस कोऑपरेशन इश्यूज। दे रिव्यूड द रीसेंट बायलैटरल इवेंट्स सच एज द इंडस एक्स समिट हेल्ड इन न्यू दिल्ली लास्ट मंथ एंड द बायलैटरल ट्राई सर्विस एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ। The U.S. Secretary of Defense appreciated the important role being played by the Indian Navy in conducting anti-piracy operations in the Indian Ocean region. The two ministers discussed ways and means to implement the India-US Defense Cooperation Roadmap, which was concluded last year. Other defense industrial cooperation issues, such as repair of US naval ships in Indian shipyards, were also briefly discussed. The Election Commission ordered large-scale transfers of bureaucrats ahead of the Lok Sabha elections. The Commission removed the Home Secretaries in six states along with the Director General of Police of West Bengal. Sources said that the Home Secretaries have been removed in Gujarat, Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand, Himachal Pradesh and Uttarakhand. The Secretaries of the General Administrative Department in Mizoram and Himachal Pradesh have also been shifted. Besides, the poll body has ordered the removal of Brihan Mumbai Municipal Commissioner Iqbal Singh Chahal, as well as additional commissioners and deputy commissioners. IPS officer Vivek Sahai has been appointed as the next DGP of West Bengal after the removal of state DGP Rajiv Kumar.
स्विस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024 आज स्विट्जरलैंड के बेसल में शुरू होगा। पुरुष सिंगल्स में सातवीं वरीयता प्राप्त भारत के लक्ष्य सेन मलेशिया के लियोंग जूनहाओ के सामने अपने अभियान की शुरुआत करेंगे, जबकि किदांबी श्रीकांत का सामना ताइवान के वांग जू वेई से होगा। महिला सिंगल्स में चौथी वरीयता प्राप्त पीवी सिंधु का सामना जर्मनी के योवोन ली से होगा। वहीं महिलाओं के डबल्स में छठी वरीयता प्राप्त अश्विनी पोनप्पा और तनिषा क्रिस्टो की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया की मेलिसा ट्रायस, पुष्पी टासारी और राचेल एलेक्सिया रूस की जोड़ी से होगा, जबकि त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी अमरीका की एनी जू और केरी जू की जोड़ी से भिड़ेगी। इस टूर्नामेंट का समापन रविवार को होगा।
In some international news, US President Joe Biden has warned the Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu that a major ground offensive in Rafah would be a mistake. The two leaders were having a telephonic conversation for the first time in a month amid growing tensions. According to White House National Security Advisor Jake Sullivan, the US President told Netanyahu that a ground offensive would lead to more innocent civilian deaths, worsen the already dire humanitarian crisis. Mr. Sullivan also said that Netanyahu had agreed to Biden's request to send a delegation of senior Israeli officials to Washington to discuss Israel's Rafah plans and a possible alternative approach. Meanwhile, UN-backed Integrated Food Security Phase classification has said that famine is expected in northern Gaza if urgent aid is not delivered. It also underlined the urgent need for an immediate cessation of hostilities and sustained access for the provision of essential supplies and services. Along the Gaza Strip, the number of people facing catastrophic hunger has risen to 1.1 million, that is about half the population.
हॉकी इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए 27 सदस्यों की हॉकी टीम की घोषणा कर दी है। पांच मैचों की श्रृंखला का पहला मुकाबला 6 अप्रैल को ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में खेला जाएगा। हरमनप्रीत सिंह श्रृंखला में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। पेरिस ओलंपिक के लिए यह श्रृंखला काफी महत्वपूर्ण है। मौसम विभाग ने अगले चार दिन तक बंगाल के गांगेय क्षेत्र और ओडिशा में गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा होने की संभावना व्यक्त की है। आज तूफान के साथ ओलावृष्टि हो सकती है। बृहस्पतिवार तक झारखंड, विदर्भ, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और बिहार में गरज और तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। विदर्भ, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में आज ओलावृष्टि की आशंका है। वहीं पूर्वी मध्य प्रदेश में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। आज ओडिशा, छत्तीसगढ़, बंगाल के गांगेय क्षेत्र और झारखंड में तेज बारिश भी हो सकती है। तेलंगाना में तीन दिन तक गरज के साथ बारिश और ओलावृष्टि हो सकती है। वहीं तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में बृहस्पतिवार तक ओलावृष्टि की आशंका है। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और श्रोताओं, अब समय है प्रमुख महानगरों यानी चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद और दिल्ली, मुंबई, कोलकाता के समाचारों को जानने का। तो सायरा, कहां से शुरुआत कर रहे हैं?
वेल निखिल, वी आर स्टार्टिंग विद शहर चेन्नई।
जी,
द म्यूजिक एकेडमी हैज अवार्डेड रिनाउंड कर्नाटक सिंगर टीएम कृष्णा द संगीत कला निधि अवार्ड फॉर द ईयर 2024। According to the Academy's press announcement, the artist advocated for social change through music. According to the press release, Krishna is a writer who has written analytical books on music and is a multiple award winner for his writing, music and social cause advocacy. Neena Prasad, a Mohini Yattam exponent, has received the Nritya Kalanidhi Award. The Model Code of Conduct awareness campaigns have been intensified by Chief Electoral Officer Satyabrat Sahu. Through video conference, he went over the arrangements with the district collectors. Additionally, he went to the state control room in Chennai, which is where the violations are kept track of. Speaking to media, he declared that it is against the Mortal Code of Conduct to transfer money, cash or other valuables without appropriate paperwork. Moving on to Bengaluru, the South Western Railway General Manager Arvind Srivastav conducted window trailing inspection between Hubballi and Kosagal section yesterday in Karnataka. Several key operational and safety aspects were reviewed. The Garag and Koppal railway stations, including the station master's panel room and relay room, were inspected after interacting with the staff. The team also inspected Hospete railway station, crew lobby, running room of crew and reviewed various safety parameters. These are the ongoing railway infrastructure and station redevelopment works being implemented under the Amrit Bharat station scheme. Moving on to Hyderabad, in Telangana, the Central Law Enforcement Agencies and State Police have seized 243 crore rupees after the State Assembly election held in November last year. State Chief Electoral Officer Vikas Raj informed this to the media in Hyderabad last evening. He said out of this, the Directorate of Revenue Intelligence seized cash and gold worth 118 crore rupees. He said they are fully prepared for a peaceful and successful conduct of elections across the state. He said over 40 companies of Central Armed Forces have arrived in the state and they have been dispatched to districts on bandobast duty along with state police forces. The CEO said polling staff will visit the place and ensure that those voters will exercise their right to vote. So Nikhil, this was the buzz that I had from the three cities of Chennai, Bengaluru and Hyderabad. What is the latest that you have from Delhi, Mumbai and Kolkata?
Jiya, shuruaat karte hain Rajdhani Delhi ki khabron ke saath mein. राजधानी के पश्चिमी दिल्ली इलाके में चल रहे सफाई कार्य के कारण आज कुछ इलाकों में पानी नहीं आएगा। दिल्ली जल बोर्ड की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार नागलोई, गुरु हरिकिशन नगर, अंबिका विहार, सुंदर विहार, पीरागढ़ी और पश्चिम विहार के आसपास के इलाकों में पानी की आपूर्ति प्रभावित रहेगी। जल बोर्ड ने इन क्षेत्र के लोगों को सलाह दी है कि वे जरूरत के अनुसार पहले से ही पानी भरकर रख लें और जरूरत पड़ने पर दिल्ली जल बोर्ड के कार्यालय से पानी के टैंकर मंगा सकते हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान दिल्ली में 7 संसदीय सीटों पर लगभग 1,47,00,000 मतदाता अपने नेताओं के राजनीतिक भाग्य का फैसला करेंगे। इनमें से लगभग 80 लाख पुरुष और 67 लाख से अधिक महिलाएं शामिल हैं। लोकसभा के 7 निर्वाचन क्षेत्रों में छठे चरण में 25 मई को मतदान होगा। चुनाव की अधिसूचना 29 अप्रैल को जारी होगी। नामांकन पत्र भरने की अंतिम तिथि 6 मई है। 9 मई तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। देश के अन्य संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के साथ मतगणना 4 जून को होगी। भारतीय जनता पार्टी ने सभी 7 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने 6 निवर्तमान सांसदों की जगह नए उम्मीदवारों को मौके दिए हैं। वहीं दिल्ली में लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से गठबंधन किया है। आम आदमी पार्टी ने 4 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। गठबंधन के तहत मिली 3 सीटों के लिए कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों के नाम तय नहीं किए हैं। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने विश्वास व्यक्त किया है कि 2014 और 2019 की तरह 2024 लोकसभा चुनाव में भी राजधानी की जनता भाजपा को 7 सीटों पर विजयी बनाएगी। प्रदेश कार्यालय में कल दिल्ली के 7 लोकसभा प्रत्याशियों के साथ प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा के उम्मीदवार बहुत ही मेहनती और अनुभवी हैं और दिल्ली की जनता उन्हें अपना आशीर्वाद देगी। चलते हैं मुंबई की ओर। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद बृहन मुंबई नगर निगम बीएमसी के प्रमुख इकबाल सिंह चहल को हटाने की घोषणा की है। महाराष्ट्र राज्य के मुख्य सचिव द्वारा अधिकारियों के स्थानांतरण के संबंध में पिछले निर्देशों का पालन करने में विफलता पर असंतोष व्यक्त करते हुए आयोग ने उन्हें आज शाम 6 बजे तक एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा मुख्य सचिव को सभी नगर निगम आयुक्तों और अतिरिक्त या उप नगर आयुक्तों को महाराष्ट्र के अन्य निगमों में समान पदों पर स्थानांतरित करने का भी निर्देश दिया है। अभिनेता जितेंद्र ने एक वीडियो के जरिए मुंबईवासियों और देश के सभी नागरिकों से अपील की है कि वे अपना नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित करें और आगामी चुनावों में मतदान अवश्य करें। मुंबई में लोकसभा आम चुनाव 2024 के लिए मतदान 20 मई 2024 को होगा। व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी कार्यक्रम के तहत मुंबई उपनगर के कलेक्टर श्री राजेंद्र क्षीरसागर और मुंबई शहर जिले के कलेक्टर श्री संजय यादव ने इस चुनाव में मुंबई में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए शहर में कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। इसके तहत मुंबई शहर और उपनगरों के चुनाव स्वीप कार्यक्रम के समन्वयक अधिकारी डॉ सुभाष दलवी और जुहू पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक श्री सुनील जाधव ने जितेंद्र से मुलाकात की और मतदाताओं को शिक्षित करने के लिए जागरूकता वीडियो का अनुरोध किया था। मुंबई के कलेक्टर कार्यालय ने voters.eci.gov.in वेबसाइट पर मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने और इसे सत्यापित करने या फिर वोटर हेल्पलाइन मोबाइल ऐप या वोटर हेल्पलाइन नंबर 1800221950 पर संपर्क करने की अपील की है। इस बीच बृहन मुंबई नगर निगम ने मरम्मत कार्यों के बाद बांध में पानी की कमी के कारण मुंबई में 15% पानी की कटौती की घोषणा की है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि 24 घंटे की अवधि के लिए 15% पानी की कटौती भांडुप परिसर में प्री मॉनसून रखरखाव कार्य के लिए 24 अप्रैल तक लागू 5% पानी की कटौती के अतिरिक्त है। विज्ञप्ति के अनुसार महानगर से लगभग 60 किलोमीटर दूर ठाणे जिले के पिसे में बांध में पानी का अपर्याप्त भंडार है। वहीं 48 किलोमीटर दूर भटसा जलाशय से पिसे बांध को पानी मिलने के बाद शहर में पानी की आपूर्ति बहाल होगी। और अब चलते हैं कोलकाता। कोलकाता के गार्डन रीच इलाके में एक निर्माणाधीन इमारत ढह गई थी जिसमें 10 लोगों की मृत्यु हो गई और अन्य लोगों के फंसे होने की आशंका है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल डॉ सीवी आनंद बोस ने यहां का दौरा किया। आरोप है कि निर्माण शुरू होने से पहले ही एक तालाब को भरा गया था और कल आधी रात से पहले यह निर्माणाधीन 5 मंजिला इमारत ढह गई। तो ये थे अब तक के प्रमुख महानगरों के मुख्य समाचार। और साहिर अब समय हो चला है मौसम पर एक नजर डाल लेने का। तो आज दिल्ली में आसमान साफ रहेगा, अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। वहीं मुंबई में भी आसमान साफ रहेगा, न्यूनतम तापमान 23 डिग्री रिकॉर्ड किया गया जबकि अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। कोलकाता की बात करें तो हम तेज हवाओं के साथ बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ सकती हैं। न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जबकि अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। अन्य महानगरों में सायराज मौसम कैसा रहेगा?
Well, Nikhil, if we talk about Chennai, Bengaluru and Hyderabad, all three cities are going to have a partly cloudy sky, while Hyderabad will also expect it to have some light rain or drizzle. In Chennai, the temperature will hover between 25 and 33 degrees Celsius, while in Bengaluru, it will be between 21 and 34 degrees Celsius. The temperature will hover between 22 and 34 degrees Celsius in Hyderabad.
और अब समय है कुछ प्रमुख घटनाओं को याद करने का जिन्होंने आज के दिन अपनी खास पहचान दर्ज की थी। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि आज का ही वो दिन था जब वर्ष 1972 में भारत और बांग्लादेश के बीच मित्रता संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे।
In 1848, Lokhit Wari started his column Shatpatra in the newspaper named Prabhakar. And on this day, Prabhakar, in 1944, the Azad Hind Fauj hoisted the national flag for the first time in Northeast India. On this event, Vimal Roy produced the film Pehla Aadmi.
और श्रोताओं, आपको बता दें कि वर्ष 1982 में आज के दिन ही ब्रिटेन और वेटिकन में 400 वर्ष के अंतराल के बाद राजनयिक संबंध फिर से स्थापित हुए थे।
On this day, 1954, the first helicopter, S-55, arrived at Bombay by sea. In 1962, Raja Kelkar Museum, which belonged to Dinkar Gangadhar Kelkar, was opened for public.
Varsh 1996 में आज के दिन ही बोस्निया हर्जेगोविना की राजधानी सारायेवो को फिर से एकीकृत किया गया था और वर्ष 1999 में यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष जैकस सांटर को उनके पद से इस्तीफा देने के लिए कहा गया था।
And in 2000, Bill Clinton, the US president, arrived to a warm welcome in India and this was the first presidential visit of a US head in 2 decades.
और आज का ही वो दिन था जब वर्ष 2008 में डोन कुपर रॉय ने मेघालय के नए मुख्यमंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली थी। और अब याद करते हैं एक और खास चीज को जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था, लट्ठमार होली का, जो ब्रज के एक क्षेत्र में शुरू हो चुकी है। ये बहुत ही प्रसिद्ध त्यौहार है सायरा, और होली का जो मुख्य त्यौहार है उसको शुरू होने से पहले ही ब्रज रंगों में डूब जाता है और यहां पर सबसे ज्यादा जो मशहूर है वो है बरसाना की लट्ठमार होली। बरसाना को राधा का जन्म स्थान माना जाता है और यहां पर होली कुछ दिन पहले ही शुरू हो जाती है और धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन वार्तालाप के लिए होली गाई जाती है जो श्री कृष्ण और राधा के बीच जो वार्तालाप हुआ उस पर आधारित होती है। आइए सुनते हैं इसी से संबंधित ये रचना।
मोसो कहे चलो कुंजन में तनक सोनंद को छोरा जगत होरी बिज होरा तनक सोनंद को छोरा जगत होरी बिज होरा
श्रोताओं, समय हो चला है जानी मानी हस्तियों को याद करने का। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि आज हम याद कर रहे हैं सबसे पहले जेबी कृपलानी को। आज उनकी पुण्यतिथि है। वे भारत के जाने माने स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिज्ञ रहे हैं। उन्होंने एक शिक्षक के रूप में अपना जीवन प्रारंभ किया और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से उनका निकट संपर्क था। वे गुजरात विद्यापीठ के प्राचार्य भी रहे, तभी से उन्हें आचार्य कृपलानी के नाम से पुकारा जाने लगा था। हरिजन उद्धार के लिए कृपलानी जी लगातार गांधी जी के सहयोगी रहे और वे अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महामंत्री और वर्ष 1946 की मेरठ कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे। जब गांधी जी ने चंपारण की प्रसिद्ध यात्रा की थी तो जेबी कृपलानी उनके संपर्क में आए थे और उसके बाद लगातार उनके साथ में बने रहे थे। और श्रोताओं, आपको बता दें कि आज ही पुण्यतिथि है पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी की। वे आर्य समाज के प्रसिद्ध नेता थे और स्वामी दयानंद सरस्वती के शिष्य थे। पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी की गिनती आर्य समाज के प्रमुख नेताओं में की जाती है, जिन्होंने उनकी स्मृति में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना का प्रस्ताव रखा था और उन्हीं के परिश्रम के फलस्वरूप ही डीएवी कॉलेज की स्थापना हुई थी। और आपको बता दें कि विद्यार्थी जीवन और युवावस्था में ही पुस्तकों को पढ़ने में उनकी सर्वाधिक रूचि और लगन थी और जब भी स्वयं पढ़ते थे उनकी कोशिश ये होती थी कि अपने आसपास के लोगों को भी ज्यादा से ज्यादा शिक्षित किया जाए। हालांकि विद्वान होने के बावजूद उनका विज्ञान के प्रति जो असीम प्रेम था वो कहीं न कहीं ये दर्शाता है कि भारतीय मूल्यों के साथ साथ विज्ञान को भी आगे बढ़ाने में उनकी एक रुचि रही थी।
Today we are also remembering Naveen Nischal on his death anniversary, a very fine actor who made his debut with the Hindi film Sawan Bhado in 1970. In 1996, he worked in Pyar Zindagi Hai along with Rita Bhadri and Raj Mohammad. The film was shot in Hyderabad. Well, Naveen Nischal studied in Bangalore Military School, which was the erstwhile King George Wall India Military College. He was the first gold medalist from the FTII to make it big. He starred in several superhit movies such as Victoria Number 203, Dhund and Aashiq Banaya Aapne. However, the film Haste Zakhm was the great breakthrough of his career. And usi film ka ek khoobsurat gana hai, Haste Zakhm ka. Let's listen to that.
Sunte hain.
Tum jo mil gaye ho, to ye lagta hai, ke jahan
ने 90 के दशक में फिल्मों में चरित्र अभिनय के अलावा कई टीवी धारावाहिकों में भी काम किया था और धारावाहिक देख भाई देख उनका सबसे अधिक लोकप्रिय धारावाहिक रहा था। और श्रोताओं, आपको बताया जाए कि आज ही पुण्यतिथि है भाषा चिंतक प्रोफेसर सूरजभान सिंह की। वे भारत सरकार के वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग के अध्यक्ष भी रहे थे और इसी दौरान उनके मार्गदर्शन में अंग्रेजी हिंदी की पारिभाषिक शब्दावली और कोश विज्ञान का कम्प्यूटरीकरण किया गया था। उनके 10 वर्षों यानी कि 1995 तक सूरजभान सिंह केंद्रीय हिंदी संस्थान के नई दिल्ली और आगरा केंद्र में प्रोफेसर के रूप में कार्य करते रहे और इसी दौरान उन्होंने कंप्यूटर और वेब आधारित लीला हिंदी स्वयं शिक्षक सीरीज और मंत्र नामक अंग्रेजी हिंदी अनुवाद प्रणाली के अनेक कार्यक्रम भी तैयार किए थे। उनके द्वारा लिखित 12 से अधिक पुस्तकें और 100 से अधिक शोध लेख देश विदेश में प्रकाशित हुए हैं। 2 पुस्तकें फ्रांस से और 2 पुस्तकें रोमानिया से भी प्रकाशित की गई हैं।
Today we are also remembering Yogesh Gaur, jinko sirf Yogesh ke naam se jana jata hai, and of course we know that he has given some very very fine songs in the Hindi film industry, and he's possibly his best known works came from the film Anand, including the song Kahin Dur Jab Din Dhal Jaye and Zindagi Kaisi Hai Paheli, and also from the film Rajnikantha Phool Tumhare. Well, he was born in Lucknow and he moved to Bombay at the age of 16 looking for work and sought the help of his cousin Yogendra Gaur, who was a screenplay writer. And during his struggle days, he even acted as an extra in mythological films like Chakradhari, starring Trilok Kapoor and Nirupa Roy. His first break was in 1962 when he wrote 6 songs for the film Sakhi Robin, including the song Tum Jo Aa Jao. But jab unki baat kar rahe hain, well, he worked with some of India's finest directors like Hrishikesh Mukherjee and Basu Chatterjee. But if we talk about his famous song, to kyun na ye khoobsurat sa gaana suna jaye.
Bilkul.
Zindagi kaisi hai paheli hai, kabhi to hasaye, कभी के रुलाए कभी देखो मन नहीं जागे पीछे पीछे सपनों के भागे कभी देखो मन नहीं जागे पीछे पीछे सपनों के भागे एक दिन सपनों का राही चला जाए सपनों से आगे कहां जिंदगी।
और श्रोताओं, ये जो गीत आपने सुना, वाकई ये ऐसे गीत हैं जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं और हजारों लाखों लोग इनसे प्रेरणा पाते हैं। और यही कारण है कि भारतीय हिंदी सिनेमा में योगेश के योगदान की वजह से उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया और उन्हें यश भारती पुरस्कार भी दिया गया था।
And let's listen to one more song written by Yogesh.
Dekha hai ye jo man ki seema dekha hai man todne lagta hai anjaani pyaas ke piche anjaani aas ke piche man daudne lagta hai।
और श्रोता, आपको बता दें कि आज ही पुण्यतिथि है केदारनाथ सिंह की। वे आधुनिक हिंदी कवियों और लेखकों में से एक हैं। केदारनाथ सिंह की चर्चित कविता संकलन तीसरा सप्तक के सहयोगी कवियों में से एक रहे हैं और उन्होंने एक कविता लिखी थी जो तमाम लोगों को बहुत ही पसंद आती है। उसकी 4 पंक्तियां कुछ इस तरह से हैं, मैं जानता हूं बाहर होना एक ऐसा रास्ता है जो अच्छा होने की ओर खुलता है और मैं देख रहा हूं इस खिड़की के बाहर एक समूचा शहर है। उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार, मैथिली शरण गुप्त सम्मान, कुमारन आशान पुरस्कार, जीवन भारती सम्मान, दिनकर पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार और व्यास सम्मान जैसे अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था।
Today is also the birthday of a very, very fine director and screenwriter, Saif Ranjpe. And she is the director of some award-winning movies like Sparsh, Katha, Chashme Baddur and Disha. And she's also written and directed many Marathi plays. Well, she won 4 National Film Awards and 2 Filmfare Awards. And the Government of India also awarded Saif the Padma Bhushan in the year 2006 in recognition of her artistic talents. Sai took to writing very early in her life and very few people know, Nikhil, that her first book of fairy tales, which was in Marathi, was published when she was just 8 years old. And well, later on she graduated from the National School of Drama in New Delhi. And unki films ki agar hum log ne Chashme Baddur ka zikr kiya hai, to I'm sure most of our listeners would be yearning to listen to this song.
Kahan se aaye badra
श्रोताओं, चलते चलते आपको बता दें कि आज जन्मदिन है माधुरी बर्थवाल का। वे उत्तराखंड की लोक संगीत से जुड़ी प्रसिद्ध लोक गायिका हैं और लोक संगीत और गीतों में संरक्षण और प्रचार के लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा उन्हें 2019 में नारी शक्ति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। और श्रोताओं, आप सभी से अनुमति लेने का समय हो चला है, तो निखिल और शायरा को कार्यक्रम आज सवेरे यहीं पर संपन्न करने की इजाजत दीजिए।
Well, stay tuned for Samachar Prabhat, which is our Hindi news bulletin, and also followed by Morning News English at 8:15 a.m. Thanks for tuning, listeners. Have a great day ahead.
Namaskar. Namaskar.